तो पंच महाभूतों से ही ये सारी सृष्टि हुई है। अतः पांच पैर तो ये हो गए, छठा है इसके अंदर चेतन का संसर्गाध्यास। मोटी भाषा में जीव समझ लो। जीव तो पंच महाभूतों का कार्य है नहीं, परंतु है छठा हो, इसका छठापना कैसा है? तो जैसे कहें ये आदमी छठा है, तो उसका मतलब है कि बाकी पांच की अपेक्षा से छठा है। वैसे तो हरेक एक ही होता है, अगर वहां पांच बैठ गए तो छठा हो गया, चार बैठ गए तो पांचवा हो गया, तीन बैठ गए तो चौथा हो गया। अपेक्षा से होते हैं सब, बिना किसी अपेक्षा के तो हरेक एक ही है। इन पांच दृश्यों की अपेक्षा से जब आत्मा को कहते हैं, तो इन पांच की अपेक्षा से उसको छठा कह दिया। ये छह पैर वाली मकड़ी, ये अविद्या का लांछन भगवान शंकर के शिवलिंग पर, चेतन पर, ब्रह्म पर पड़ गया। अब जो विद्या रूपी माता है, माता से बच्चा उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान किससे उत्पन्न होगा? तो ब्रह्म विद्या से, ब्रह्माकार वृत्ति से। तो ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला होने से कह सकते हैं कि ब्रह्म विद्या उसकी माता है। है नहीं, है इसलिए नहीं कि ब्रह्म पहले है तब न उसकी विद्या उसका ज्ञान होता है। एक दिन पहले बतला आए थे, घड़ा है तब न घड़े का ज्ञान होता है। परंतु हमको तो घड़े का पता घड़े को देखने से लगा ना, इसलिए घड़ा चाहे हो, हमारे लिए घड़ा तो तभी हुआ जब हमने देखा। इसी तरह से भगवान शंकर उसके बच्चे तो नहीं है, परंतु फूंक मारने से बच्चे की तरह का भाव हो गया। ब्रह्म विद्या की फूंक लगते ही मकड़ी दूर हो जाती है। इसलिए भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म मात्रतः अविद्या सहकार्यादि नासीदस्तिर्भविष्यति। तत्त्वमस्यादि वाक्य की फूंक लगते ही, तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म मात्रतः, सम्यग् ज्ञान उत्पन्न होते ही क्या पता लगता है कि अविद्या न कभी थी, न है, न कभी होगी। तो फूंक मारते ही दूर हो गई। अब ब्राह्मण को शंका हुई कि इसने फूंक मारी, ये तो गड़बड़ बात है। क्यों गड़बड़ बात है? तो शास्त्रकार कहते हैं, परमेश्वर वाणी का विषय हो नहीं सकता। फूंक मारने से मकड़ी दूर होवे, फूंक कहो और मुंह से बोलना कहो, एक ही बात है। वाणी का वो विषय नहीं, इसलिए फूंक मारने से दूर कैसे, ये तो वाणी की विषयता उसमें होनी ही नहीं चाहिए। अंत में ब्राह्मण ने ये देखा स्वप्न के अंदर, बाकी सर्वत्र तो घाव थे, जहां फूंक लगी थी वहां नहीं है। वैसे ही जिसके अंतकरण में तत्त्वमस्यादि वाक्य की फूंक लगी, बस उस अंतकरण के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, बाकी तो सभी दुख में पड़े हुए हैं। तो इसलिए कहा, सर्वम इदम ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्रास्ते संप्रसूयन्ते, सब उससे उत्पन्न होते हैं। सर्वाणि च इंद्रियाणि सहभूतैः न कारणं कारणानां ध्याता, सारी ही इंद्रियां सारे ही महाभूतों के साथ कारण नहीं है, कारणानां ध्याता, कारणों की तरफ जो दृष्टि करने वाला ध्याता रुद्र बतलाया है वही है, अर्थात सारे संसार बंधन का संहार कर देता है। रुद्र का मतलब ही होता है रुत अर्थात दुख, रुत दुखम द्रावयति इति रुद्रः, दुख को नष्ट कर देता है, दुख का संहार कर देता है, इसीलिए वह रुद्र है। अब ध्येय का स्वरूप क्या है इसके ऊपर आगे विचार करेंगे। ओंकार का ज्ञेय स्वरूप बतला रहे थे, सारे ही देवता इंद्रियां महाभूत जिससे उत्पन्न होते हैं, कारणं तु ध्येयः, जिससे उत्पन्न होते हैं अर्थात जो कारण है, अब कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कल्पना का आधार रूप कारण और दूसरा होता है उस रूप में बदलने वाला कारण। इसमें से जो बदलने वाला कारण है वह तो पहले कारण कार्य भाव वाले कारण में कह दिया गया। अब जिसको बतला रहे हैं वह कारण है जो बिना बदले हुए प्रतीत होता है, दोनों का फर्क बतलाते हुए कहा गया, तत्वतः अन्यथा भावः, सचमुच में कोई चीज दूसरे ढंग की हो जाए, तत्वतः माने तात्विक दृष्टि से सचमुच में, अन्यथा जैसी पहले नहीं थी वैसी दूसरे रूप में भाव अर्थात उसकी सत्ता हो जाए, सत्ता यद्यपि एक ही है परंतु सत्ता की प्रतीति तीन रूप से होती है। सत्ता माने है पना, सत माने है, सत्ता माने है पना, है पने की सत्ता की प्रतीति तीन तरह से। एक तो सत्ता की प्रतीति ऐसी है किसी के साथ प्रतीत होती है और कभी ऐसा नहीं कि है के बिना उसकी प्रतीति हो। जैसे मैं कभी भी ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैं नहीं हूं, मैं की जब प्रतीति होती है तो इस रूप में ही होती है कि मैं हूं, मैं के साथ कभी भी नहीं हूं नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं हूं ये प्रतीति होने के लिए पहले मैं हूं तभी तो मैं नहीं हूं इस बात को जानूंगा। मैं के साथ कभी भी नहीं हूं की प्रतीति नहीं, जब भी मैं होगा तो हमेशा है रूप से ही होगा। इसको कहते हैं पारमार्थिक सत, ऐसा है जो कभी भी नहीं है नहीं होता। दूसरा ऐसा है जो हमेशा नहीं है ही होता है। एक तो हुआ जो हमेशा है ही होता है, जैसे मैं, एक जो हमेशा नहीं है ही होता है, जैसे बांझ का बेटा। बांझ का बेटा है इस रूप से कभी प्रतीति नहीं होती, बांझ के बेटे की प्रतीति का प्रकार हमेशा ही है, बांझ के बेटा नहीं है। तो एक वह चीज हुई जो हमेशा है के साथ प्रतीत होती है, एक वह चीज हुई जो हमेशा नहीं है के साथ प्रतीत होती है, उसी को असत कहते हैं। सत अर्थात हमेशा है ही, असत अर्थात हमेशा नहीं ही है। ठीक से समझना समझे। ये दोनों बिना कारण के होते हैं। जो हमेशा है उसका भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण का मतलब है पहले नहीं था और फिर कारण आने पर हुआ। जो हमेशा है उसका कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था जब वो नहीं था। अतः सत भी बिना कारण के होता है। असत भी बिना कारण के होता है, क्योंकि यदि नहीं है का कारण हुआ तो इसका मतलब हुआ उस कारण के होने के पहले वो है और वो कारण आ गया तो नहीं है। जैसे यदि कहते हैं देवदत्त नहीं है, देवदत्त नहीं रहा, देवदत्त मर गया, तो इसका मतलब पहले देवदत्त जिंदा था तब न मर गया। इसी प्रकार कोई चीज यदि कारण से नहीं है, इसका मतलब हुआ कारण आने के पहले वो थी। और नहीं है को बतलाया वो हमेशा ही नहीं है, तो जो हमेशा है वह भी बिना कारण के, जो हमेशा नहीं है वह भी बिना कारण के। एक सत हुआ एक असत हुआ। ये दो चीजें ठीक से समझ ली भाई। ये दोनों चीजें बहुत कम हैं। जो हमेशा है वह भी बहुत कम है। एकमात्र प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही ऐसा है जो हमेशा है। जो कभी नहीं है वो भी चीज बहुत कम है, जैसे बाज का बेटा। अधिकतर ऐसी चीजें हैं जो किसी समय में है और किसी समय में नहीं है। जितनी संसार की चीजें देखते हो वो सब ऐसी ही हैं। आदमी पैदा होने के पहले नहीं, घड़ा बनने के पहले नहीं, मकान भूकंप से गिरने के बाद नहीं। जितनी संसार की चीजें हैं वो सब कभी हैं और कभी नहीं हैं। सत और असत ये दोनों तो कारण से नहीं होते, परंतु ये चूंकि बदलता है, कभी है और कभी नहीं है, इसलिए किसी कारण के आने पर है और किसी कारण के आ जाने पर नहीं है। इसलिए इसको तीसरी जाति का कहा सत और असत दोनों से विलक्षण। संसार की सब चीजें न सत कही जा सकती हैं न असत कही जा सकती हैं, क्योंकि किसी समय में हैं और किसी समय में नहीं हैं। सत और असत दोनों से विलक्षण। उनका अन्यथा भाव होता रहता है। अन्यथा भाव का मतलब हुआ पहले जैसा था उससे बदलना। बदलेगी वही चीज जो पहले है और कारण आने पर नहीं है हो गया, या नहीं है और कारण आने पर है हो गया। अब ये वास्तविक भी होता है तत्वतः अन्यथा भाव, और अतत्वतः अन्यथा भाव बिना बदले हुए भी होता है। ठीक जैसे सोना, एक तो सोने में सोनापना है, चाहे टिकड़ी होवे, चाहे पासा होवे, चाहे बिस्कुट होवे, इन सारे शक्लों के अंदर, इन सारे रूपों के अंदर सोना तो सोना ही है। सोना नहीं बदलता, ठीक से समझना भाई, सूक्ष्म बात है। सोना नहीं बदलता, क्या बदलता है? सोने का रूप बदलता है। कभी सोना टिकड़ी के रूप में है, कभी सोना बिस्कुट के रूप में है, कभी सोना गहने के कड़े के रूप में है। सोने के रूप बदलते रहते हैं, सोना तो वैसा का वैसा है। इसी प्रकार मिट्टी से तुम तरह तरह के बर्तन बनाते हो, मिट्टी नहीं बदलती। मिट्टी का तुमने पिंड बनाया, मिट्टी का तुमने बर्तन बनाया, मिट्टी का तुमने चूर्ण बनाया, ये सब मिट्टी के रूप तो बदले, परंतु मिट्टी तो मिट्टी ही है। अब कहो कौन सी चीज मानी जाए बदलने वाली और कौन सी नहीं बदलने वाली? तो सारे कार्यों में जो एक जैसी रहती है वो नहीं बदलने वाली, और कार्यों के अंदर जो एक जैसा नहीं रहता वो बदलने वाला। तो चाहे बिस्कुट है, चाहे पासा है, चाहे मोहर है, टिकड़ी है, कड़ा है, उन सब में सोना तो है नहीं बदलने वाला। इसलिए सब में कहते हो सोने की टिकड़ी, सोने का कड़ा, सोने की अशर्फी, सोने का पासा, या मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सिकोरा, मिट्टी का लोंदा। तो मिट्टी एक जैसी, सोना एक जैसा, और जो बदलने वाला है उसको कहते हो कड़ा, अशर्फी, घड़ा, सिकोरा। जो एक जैसा रहता है वो नहीं बदलने वाला, और जो अलग अलग रूप को धारण करता है वो बदलने वाला। अब विचार करो इस सारे संसार में कौन सी चीज है जो सब चीजों में एक जैसी रहती है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं उनके अंदर हैपने की प्रतीति एक जैसी होती है और रूप बदलते रहते हैं। घड़ा है, लड्डू है, हीरा है, पन्ना है, देश है, जानवर है, मनुष्य है, देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है कभी बदलता नहीं। इसलिए है तो नहीं बदलने वाला। बदलने वाले हो गए लड्डू, पेड़ा, घड़ा, आदमी, जानवर, देवता, ये सब बदलने वाले हो गए। अब है चूंकि एक जैसा रहता है इसलिए ये नहीं बदलने वाला कारण हुआ, और नाम और रूप बदल रहे हैं, क्योंकि हर बार जब रूप बदलते हो तो नाम बदल जाता है। इसलिए नाम और रूप ये बदलने वाले हैं, बदलने वाली चीज को ही माया कहते हैं। जिस प्रकार से बड़ी भारी ढेरी होवे चावल की, उसमें पसेरी को डाल करके निकालते जाओ। एक वो पुरानी कहानी आती है, किसी राजा ने कहा हमको ऐसी कहानी सुनाओ जो लंबी हो, क्योंकि कहानी खत्म होते ही मैं उसको मरवा दूंगा। तो लोग बड़ी बड़ी लंबी कहानियां सुनाते रहे, कोई महीना भर में, कोई दो महीना में मारा जाए। अब कहानी कितनी लंबी कहे कोई। अंत में एक बुद्धिमान आया, उसने कहा राजन, एक बहुत बड़ा जमींदार था, उस साल पानी बहुत अच्छा बरसा, इसलिए खेती बहुत बढ़िया हुई, खूब अनाज हुआ। उसने उसके लिए बड़ा भारी कोठार बनाया और उसके अंदर वो सारा अनाज भर दिया। हजारों मन अनाज था, बहुत बड़ा जमींदार था। उस कुठार के बनने में एक भूल रह गई, उसमें एक छेद था। चिड़िया ने वो छेद देख लिया, चिड़िया उसके द्वारा अंदर गई, उसने एक दाना उठाया और फुर्र करके उड़ गई। उसको देख करके दूसरी चिड़िया भी उसी दरवाजे से, उस छेद में से घुसी और उसने दूसरा दाना लिया और फुर्र करके उड़ गई। तीसरी ने देखा, तीसरी आई, उसने दाना लिया, फुर्र करके उड़ गई। अब हजार, दो हजार, चार हजार। राजा कहने लगा कहानी आगे चलाओ। बोले पहले कुठार तो खाली हो जाए। अब वो हजारों मन अनाज का कुठार कब खाली हो रहा, एक एक। राजा ने हार मान ली। राजा ने कहा तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली नहीं है, तुमको अब मार नहीं सकते। जैसे ये कुठार है ऐसे ही ये माया कुठार है। कुठार इसके लिए यहां पर कह दिया कि कारणंतु ध्येयः सर्वैश्वर्य संपन्नः सर्वेश्वरः शंभुराकाश मध्ये। सर्वैश्वर्य संपन्नः सारे ऐश्वर्यों से संपन्न ये परमेश्वर की माया शक्ति है। अब इस माया शक्ति में से कितनी चीजें निकल सकती हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है।